ओम शांति। वेलकम आफ्टर अ स्वीट ब्रेक। क्या मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि जो भी पीछे बैठे हुए भाई बहने हैं, डेलीगेट्स हैं, आप थोड़ा सा आगे आकर बैठेंगे, क्योंकि अभी का जो है एक चर्चा सत्र है, तो जब सब मिल के बैठेंगे तो वो एक मोमेंटम भी बढ़ेगा। पीछे बैठे हुए डेलीगेट्स कृपया आगे आकर बैठेंगे। जी, तो एजुकेशन फॉर होलिस्टिक वेलबींग इस विषय पर आयोजित कॉन्फ्रेंस का आज का तीसरा दिवस है, और इन तीन दिनों में वेलबींग के अलग अलग डायमेंशंस को हमने एक्सप्लोर किया हुआ है। हमारे अनुभवी वक्ताओं ने अलग अलग डायमेंशंस के ऊपर बहुत सुंदर मार्गदर्शन भी किया है। कल जो वर्कशॉप्स हुए थे, 8 प्रकार के वर्कशॉप्स, तो मैं समझती हूँ आप सब ने उन वर्कशॉप्स में किसी एक वेलबींग के एस्पेक्ट को, डायमेंशन को बहुत गहराई से एक्सप्लोर किया होगा और अपने लिए कुछ एक्शन प्लान भी बनाया होगा। सही है, सबने बनाया एक्शन प्लान्स अपने लिए, जो भी एक डायमेंशन आपके लिए आया होगा कि मैं घर वापस जाने के बाद खुद के लिए उस वेलबींग के लिए क्या स्टेप्स लूंगी या लूंगा, है ना? क्योंकि हम जितना सब कुछ सारी चीजें समझ रहे हैं, उसका फायदा कब है? जब हम उन लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करें अपने जीवन में। तो ये हमने कल अपने पर्सनल लेवल पर किया। अब समय है ये सारे तीन दिनों के जो भी लर्निंग्स है, रियलाइजेशंस है, वो हम कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट करें, इन चीज़ों का एक एक्शन प्लान बनाना। और इसी कारण अभी हम आपके सन्मुख उपस्थित हुए हैं एक चर्चा सत्र को लेकर, जिसकी थीम है एक्शन प्लान क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ वेलबींग। तो इस चर्चा सत्र को शुरुआत करते हैं हम, और उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारी सभा में ही उपस्थित कुछ दिग्गजों को। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ बीके डॉक्टर ममता दीदी। आप एजुकेशन विंग के रीजनल कोऑर्डिनेटर है गुजरात रीजन के। आप पिछले 40 सालों से ईश्वरीय सेवाओं में अपना योगदान दे रहे हैं। आपने 50 से अधिक नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में वक्ता के रूप में भाग लिया हुआ है। आपने 20 से अधिक विद्यार्थियों को अपने निर्देशन में पीएचडी की पदवी उन विद्यार्थियों ने प्राप्त की हुई है, और आपकी 7 पुस्तकें भी विभिन्न विषयों पर प्रकाशित हुई है। वर्तमान समय आप विवेकानंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स गुजरात में प्रिंसिपल के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। मैं चाहूंगी आप सब फिर से करतल दोरी से दीदी जी का स्वागत करेंगे। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर मधुकर बावरे जी को। आप जॉइंट सेक्रेटरी है यूजीसी में, 2022 से आप वहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। आप ब्यूरो हेड है ई गवर्नेंस एंड डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के। आपने इसके पहले 2017 से 2022 तक एज अ डेप्यूटी डायरेक्टर AICTE में भी अपनी सेवाएं दी हुई है। उसके पहले आप महाराष्ट्र का एक बहुत रिनाउंड कॉलेज है, वालचंद इंजीनियरिंग कॉलेज, जो सांगली में स्थित है, वहाँ पे भी एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दी है। आपने IIT रुड़की से PhD की हुई है, और आपने विभिन्न इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में अपने रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट किए हुए हैं। अब मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि करतल ध्वरी से अपने एस्टीम्ड गेस्ट का हम स्वागत करेंगे। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे अगले दिग्गज एस्टीम्ड गेस्ट को, प्रोफेसर डॉक्टर संजीव शर्मा जी। आप वाइस चांसलर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, डीम्ड यूनिवर्सिटी जयपुर में। आप पिछले 35 सालों से आयुर्वेद और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आपके 52 रिसर्च पेपर्स और 32 एडिटोरियल्स और 8 किताबें पब्लिश हुई है। आपने 36 से भी ज़्यादा PG स्कॉलर्स और 12 PhD स्कॉलर्स को गाइड किया हुआ है। आपने अपने कार्यकाल में विभिन्न पुरस्कार, आपको अपने कार्यकाल में विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उसमें से एक विशेष नोंद करने लायक है, जो है वो गिनीस वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड होल्डर भी है, जिसमें 733 आयुर्वेदा स्टूडेंट्स को साइमल्टेनियसली नस्य पंचकेंद्रा ट्रीटमेंट दी गई थी। तो उसके लिए आप निमित्त रहे हैं। तो करतल ध्वनि से हम फिर से उनका स्वागत करेंगे। और अब मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर बीके डॉक्टर महेंद्र भाई जी को. आप एग्जीक्यूटिव मेंबर है एजुकेशन विंग के, आप रिटायर्ड प्रिंसिपल है गवर्नमेंट कॉलेज कर्नाटका के. आप पिछले 50 सालों से इस ईश्वरीय ज्ञान को, राजयोग को अपने जीवन में प्रैक्टिस कर रहे हैं. आपने एज ए रिसोर्स पर्सन वैल्यू एजुकेशन इन कर्नाटका काम किया हुआ है और नियरली उन्होंने 25,000 गवर्नमेंट टीचर्स को ट्रेन भी किया हुआ है. वर्तमान समय आप शांतिवन में अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं और हमारा एक मैगजीन निकलता है मंथली, सेवांजलि कन्नड़ा मैगजीन है, उसके आप एडिटर भी हैं. तो करतल ध्वनि से हम सब उनका स्वागत करेंगे. मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी बहनों से जो हमारे एस्टिंग गेस्ट का पुष्प गुच्छ और शाल के द्वारा स्वागत करें. इसके पहले कि हम इस चर्चा सत्र को शुरू करें, मैं चाहूंगी कि आप सब जो अनुभवी शिक्षक सभा में उपस्थित है, चर्चा के दरम्यान अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं पूछने हैं पैनलिस्ट से, तो आप चीट्स पर लिखकर हमारे वॉलेंटियर्स को दे सकते हैं. हम प्रयास जरूर करेंगे कि उन क्वेश्चंस को हम सबके सन्मुख रखें. थैंक यू. तो आज जैसे हम जानते हैं कि हाँ जी, फिर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो पीछे हमारे डेलीगेट्स बैठे हैं, कृपया आप आगे आकर बैठें. तीनों कॉलम्स में जो भी पीछे डेलीगेट्स बैठे हैं, कृपया आप आगे की सीट्स लें. तो जैसे हम समझते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि कैसे हम अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज में एक वेलबींग का कल्चर क्रिएट करें, जिससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, युवा पीढ़ी है जो हमारे देश का भविष्य है, वो एक होलिस्टिक वेलबींग को अपने जीवन में अनुभव करें. एकेडमिक्स के साथ साथ ही अलग अलग डायमेंशंस को वेलबींग के वो समझे, उसको जीवन में अनुभव करें, जिससे एक बहुत सुंदर, एक सशक्त और पॉजिटिव सकारात्मक युवा पीढ़ी या एक जनरेशन भारत की तैयार हो सके. तो इसमें मैं हम अलग अलग प्रश्न लेते जाएंगे, हमारे पैनलिस्ट को पूछते जाएंगे. तो सबसे पहले मैं चाहूँगी, प्रश्न पूछना चाहूँगी डॉक्टर मधुकर वावरे जी से. सर, हम दाता जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके अनुभव से कि स्टूडेंट वेलबींग और उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस या एंगेजमेंट, इन दोनों का क्या रिलेशन है? कैसे स्टूडेंट वेलबींग इम्पैक्ट करती है उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस और उनके ओवरऑल एंगेजमेंट पर?
ओम शांति. स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये उनके ओवरऑल वेलबींग पर डिपेंडेंट रहता है. आज हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स पर कुछ एकेडमिक प्रेशर भी आ जाता है. आज हम सुनते हैं कि कुछ बच्चों को इवन आईआईटी में भी एडमिशन मिलता है और वहां भी सुसाइड केसेस हो रहे हैं, स्टूडेंट्स आत्महत्या कर रहे हैं. तो आत्महत्या करते हैं मतलब वहां कई तो प्रॉब्लम है, वहां कुछ डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन जाके ऐसे स्टूडेंट्स एक्शन ले रहे हैं. और दूसरा हम सुनते कि ट्वेल्थ क्लास में कोटा में हम सुनते हैं कि बहुत बार बच्चों को डिप्रेशन आता है, उसके अलग अलग इफेक्ट्स हो जाते हैं. कुछ स्टूडेंट्स फाइनल स्टेज तक, सुसाइड तक वो चले जाते हैं. मतलब ये जो है ये डिप्रेशन की वजह से होता है. और डिप्रेशन स्टूडेंट को क्यों आता है, तो हम जब देखते हैं, वो एनालिसिस करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये जो डिप्रेशन है ये स्टूडेंट पर जो ज्यादा प्रेशर आ जाता है. और ये प्रेशर क्यों आता है, क्योंकि हम उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं. वो बच्चों का सराउंडिंग, मतलब जो फैमिली है, सोसाइटी है, जो जब वो बढ़ते हैं उसी समय ही उन बच्चों से हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, वो फैमिली मेंबर्स एक्सपेक्टेशंस करते हैं, सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि हाँ आप अच्छा है तो आपको आईआईटी में एडमिशन मिलना चाहिए, एम्स में मेडिकल में एडमिशन मिलना चाहिए, और वो बच्चे प्रेशर में आके वो पढ़ाई करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहाँ बहुत से चैलेंजेस होते हैं। वो चैलेंजेस डिपेंड्स अपॉन देयर बेसिक इंटरेस्ट, इनहरेंट इंटरेस्ट, उनकी कैपेबिलिटी। तो जब ये मिसमैच होता है तभी वो प्रेशर आ जाता है और उसके डिफरेंट इफेक्ट हो जाते हैं। तो मेरा एक कहना है कि हम हमारे बच्चों को प्रॉपर गाइड करें, उनको अच्छे से तरह से समझाएं कि हमारा जीवन क्या है, हमें जीवन में क्या अचीव करना है और कैसे अचीव करना है। और मुझे बहुत खुशी है कि ब्रह्मा कुमारी ये काम बहुत अच्छे तरह से कर रहे हैं, पूरे भारत भर और पूरे ग्लोब में जग भर उनके ब्रांचेस है, वो कनेक्ट हो रहे हैं। और लास्ट 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि इस पर ही बहुत सारा गाइडेंस और डिस्कशन हो रहा है। तो जब जो पार्टिसिपेंट्स है, मतलब मोस्टली टीचर्स है, फैकल्टी है, स्कूल से है, कॉलेज से है, तो हमने रियलाइज किया कि हमारा मैं कौन हूं और हमें क्या करना है। हमने रियलाइज किया कि मैं मतलब मेरा मैं आत्मा हूं और हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। तो इसमें से आपको जो मिला है, जो ज्ञान मिला है, वो ज्ञान आप आपके घर में, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में लेके जाइए और वहां आप ये नॉलेज स्प्रेड कर दीजिए। अपने बच्चों में जो मतलब 9th onwards बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनको आपको समझाना है कि जीवन क्या है और हमें कैसे आगे बढ़ना है। जब हम जीवन का अर्थ समझ जाएगा तब कोई प्रेशर नहीं आएगा। हमें ये नहीं है कि गोल नहीं रखना है, लेकिन हमें गोल रखना है, लेकिन हमें खुद का असेसमेंट करके, खुद को आइडेंटिफाई करके हमें वो गोल अचीव करने के लिए प्रयास करना है, ताकि वहां कहीं स्ट्रेस नहीं रहेगा। बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी एंड बेस्ड ऑन द हार्डवर्क वी कैन अचीव सक्सेस एंड वी कैन अचीव द सेटिस्फेक्शन।
जी बहुत सुंदर। सर ने जैसे बताया कि मूल बात आ जाती है स्पिरिचुअल वेलबींग की, है ना। बाकी उनकी सारी जो कैपेसिटीज है वो हर एक बच्चे की अपनी अलग अलग हो सकती है, पर जब वो अंदर से सशक्त होगा तो वो जो कि जो भी बाहर के एक्सपेक्टेशंस है और चैलेंजेस है उनको ठीक रूप से हैंडल कर पाएगा। तो जैसे शिवानी दीदी ने भी ये पॉइंट बहुत अच्छे से मेंशन किया था कि सारे प्रकार के वेलबींग का फाउंडेशन स्पिरिचुअल वेलबींग है। हम अपनी पहचान को जानते हैं, उस परम शक्ति से अपने को भरते हैं कनेक्शन से, तो जरूर हर एक जीवन के अंग में हम सशक्त रूप से हर एक चुनौती का सामना भी कर पाएंगे। तो जैसे सर ने एजुकेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाईलाइट किया कि आज सारे एजुकेटर्स यहाँ पे बैठे हैं, आप जो अभी सीख रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, हम जाकर अपने फैमिली और स्टूडेंट्स के तक भी इसको पहुँचाए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं अगला प्रश्न पूछना चाहूँगी प्रोफेसर डॉक्टर संजीव शर्मा जी से कि जब अभी जैसे एक पॉइंट आया था सुसाइडल टेंडेंसीज का कि प्रेशर्स बच्चे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और फिर वो एक बहुत ही गहरा स्टेप ले लेते हैं अपने जीवन को ही समाप्त करने का, तो ये तो बहुत एक्सट्रीम केस हो गई। बट बहुत सारी हम मेंटल हेल्थ इश्यूज बच्चों में देखते हैं, पैनिक अटैक्स है, एंग्जाइटी वो फील करते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं, जिसके कारण बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स फिजिकल सोशल हर एक चीज़ पर उनके आते जाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर जो एजुकेटर्स इक्विप हो बच्चों को गाइड करने के लिए, जो भी अर्ली साइंस है उनके मेंटल हेल्थ कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गया है वो पहचान सके, तो हम क्या ऐसा करें जो एजुकेटर्स इक्विप हो जाए।
धन्यवाद। सबसे पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए और यहाँ ये अवसर देने के लिए मैं ब्रह्म कुमारी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो अभी डॉक्टर साहब ने चर्चा की कि बच्चे स्ट्रेस्ड हैं, स्ट्रेसफुल हैं, तो इन्होंने बताया कि स्ट्रेस के लगभग क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसमें और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एजुकेटर्स का उसमें क्या रोल हो, मेरा ख्याल प्रश्न यही है।
इक्विप कैसे करें?
यस, हम उनको कैसे इक्विप करें, क्योंकि टीचर या एजुकेटर या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, और हम किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कंट्री के लिए सिटीजन्स प्रोफेशनल्स सारे प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कंट्री तभी सही हो रह सकता है जब अच्छे सिटीजन्स प्रोड्यूस होंगे, तो उसके लिए टीचर का या एजुकेटर का रोल बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बच्चों को, जैसे आपने बात करी कि बच्चों में ये पहचानना कि मैं क्या स्ट्रेस चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसके लिए एजुकेटर को सबसे पहले तो खुद को अवेयर होना पड़ेगा। एक कहावत है कि बुझा हुआ दिया दूसरे दिए को नहीं जला सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर इज रिक्वायर्ड टू बी अवेयर अबाउट ऑल दीज फैक्ट्स, कि टीचर खुद से या एजुकेटर या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो अपने आप में अवेयर हों कि हमें ये है क्या, सारा विषय क्या है, और जब उनमें अवेयरनेस आएगी तो एक अवेयरनेस अपने आप में एक इक्विप करना है टीचर को, कि हम टीचर को अवेयर करें कि भी इस विषय के ऊपर हमें सोचना है, विचार करना है, और अपने स्टूडेंट्स में एनालिसिस करना है। तो सबसे पहला फैक्टर तो ये आता है कि टीचर्स को हम अवेयर करें, और उनके लिए डिफरेंट काइंड्स की वर्कशॉप्स, सेमिनार्स और डिफरेंट काइंड की सेशंस, और इवन टीचर्स के लिए काउंसलिंग सेशंस टीचर्स दे देमसेल्फ रिक्वायर, बिकॉज टीचर मे बी स्ट्रेस्ड, टीचर के पास भी बहुत बड़ा स्ट्रेस है, उसको भी हमें उस स्ट्रेस को भी डिस्ट्रेस करना है, और तभी जाकर के वो स्टूडेंट्स को जो है वो डिस्ट्रेस कर पाएगा, आइडेंटिफाई कर पाएगा और आगे लेके जा पाएगा। दूसरा है कि टीचर के लिए इंस्टीट्यूशन में एक एक्सेस होनी चाहिए उसके लिए कि डिफरेंट जो सोर्सेज हैं, चाहे वो इंटरनेट सोर्सेज हैं या लाइब्रेरी सोर्सेज हैं, लिटरेचर है, इन विषयों के ऊपर, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर टीचर के पास एक अच्छा एक्सेस होना चाहिए, और ताकि वो अपने आप को वेल इक्विप्ड रखे, वेल एजुकेटेड रखे। अवेयरनेस के बाद आता है कि वो अपने आप को एजुकेट करे, ट्रेन करे कि हमें बच्चों से डील कैसे करना है। हम कई बार बच्चों से प्रॉपरली, स्टूडेंट से प्रॉपरली डील ही नहीं कर पाते हैं। दूसरा मैं ये भी कहूंगा, क्योंकि टीचर्स और टीचर के ऊपर जो बॉस हैं, चाहे वो प्रिंसिपल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या वाइस चांसलर्स हैं, व्हाट्सो एवर, उनका रोल भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, देयर रोल इज बिगेस्ट रोल, और उनको सबसे पहले ये करना है, एक जिम्मेवारी लेनी है कि मेरे इंस्टीट्यूशन में किस तरह का वातावरण पूरे इंस्टीट्यूशन में हो, क्योंकि लीडरशिप जो है या लीडर का जो वहां परफॉर्मेंस है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर लीडर ही स्ट्रेस्ड है तो फिर हम स्टाफ से, टीचर से या स्टूडेंट से उनको डिस्ट्रेस होने की उम्मीद ही नहीं कर सकते। इसलिए लीडर को लीडरशिप रोल में आना पड़ेगा, उसको एक समझना पड़ेगा कि मेरा रोल क्या है। ही शुड नॉट बी एंग्जियस, ही शुड नॉट बी डिप्रेस्ड, ही शुड नॉट बी एजिटेटेड, ही शुड नॉट, वो कहते हैं ना, ईर्ष्या, लोभ, मोह, क्रोध, मोह, भय, शोक, ये सारे जो मन के अवगुण हैं, इन अवगुणों से जो लीडर्स हैं, और टीचर को भी लीडरशिप रोल में आना पड़ेगा ताकि वो वेल इक्विप्ड हो सके और अपने स्टूडेंट्स को सही तरीके से गाइड कर सके, उनको डिस्ट्रेस कर सके, और डिस्ट्रेसिंग ऑफ द स्टूडेंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए सिर्फ, क्योंकि जैसे सर ने कहा कि एकेडमिक उनके ऊपर स्ट्रेस इतना आ जा रहा, आज हमारे क्यूरिकुलम जो है या सिलेबाई जो है इतना भारी ओवरलोडेड है स्टूडेंट कि उसके पास टाइम ही नहीं है, तो ये भी मैं देखना है कि हमें उनको किस तरह से वैकेट करना है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए, इस तरह की एक्टिविटीज के। मैं एक छोटा सा अपना एग्जाम्पल देता हूं, हमारे इंस्टीट्यूट में हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है, वो स्टूडेंट्स के द्वारा ही प्रोग्राम है, डिस्ट्रेसिंग के लिए, इनडायरेक्ट पर्पज उसका ही है, और वो किया है हमने कंठकूप प्रोग्राम, कंठकूप दैट इज ओपन माइक प्रोग्राम, ओपन माइक प्रोग्राम, तो उसने स्टूडेंट्स ने एक ऑर्गेनाइजेशन मेरे इंस्टीट्यूट में बनाया, और वो हर अल्टरनेट सैटरडे जो है, जैसे पिछले कल था, अल्टरनेट सैटरडे वो ये प्रोग्राम करते हैं, और खुद से करते हैं, और मैं देख रहा हूं कि धीरे 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 उनकी पॉपुलेशन जो है वो उसमें एनरोलमेंट जो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स को एंगेज करना पड़ेगा हमें, स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स शुड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, दे शुड बी द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, दे शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बट दे शुड बी द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। उनको सोल्यूशन के पार्ट में लाएं हम कि भाई क्या सोल्यूशन है, क्योंकि प्रॉब्लम भी उनकी है और उनसे सोल्यूशन भी ढूंढे हम। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनके जो पीयर्स हैं, स्टूडेंट ना तो पेरेंट्स की सुनता, आज के स्टूडेंट की अगर सभी लोग मेरे से एग्री करेंगे कि आज का स्टूडेंट ना तो टीचर को ज्यादा सुनता है ना पेरेंट्स को ज्यादा सुनता है, वो सुनता किसकी है? तो फिर वो सुनता है अपने सीनियर्स की, पीयर्स की, या उसके लिए जो रोल मॉडल्स हैं वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि उसके लिए रोल मॉडल कौन से हैं, उनको भी हमें टैप करना पड़ेगा और उनको भी ट्रेंड करना पड़ेगा। बहुत सारे इसमें और भी एस्पेक्ट्स हैं लेकिन क्योंकि टाइम की भी कमी रहेगी तो आप आगे दे सकते।
जी जरूर, सर ने बहुत ही अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर किया है। जैसे हम होलिस्टिक वेलबींग की बात कर रहे हैं, होलिस्टिक वेलबींग होलिस्टिकली ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कोई एक की बात नहीं है। हम वेलबींग की बात जब एजुकेशन फील्ड में करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी वेलबींग हम चाहते हैं, तो और सारे जो स्टेक होल्डर्स है, जैसे एजुकेटर्स है, एडमिनिस्ट्रेटर्स है, लीडर्स है, पॉलिसी मेकर्स है, उन सब के वेलबींग के लिए कुछ ना कुछ होना जरूरी है। और वैसे प्रोग्राम्स आपने आंसर में तो बताया, सेशंस है, वर्कशॉप्स है, काउंसलिंग सेशंस है, ये सब हर एक लेवल के लिए जब हम आयोजित करते जाएंगे, एक मोमेंटम क्रिएट करेंगे तो धीरे धीरे वो कल्चर बदलता जाएगा।
छोटा सा एक और सुजेशन है कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टूडेंट्स को आइसोलेटेड वे में नहीं देख सकते हैं, वी हैव टू वर्क होलिस्टिकली, पूरे फ्रेमवर्क को देखना पड़ेगा, स्टूडेंट्स, स्टाफ, टीचर्स एंड लीडर्स, और होलिस्टिक वे से ही तभी हम एक कंजीनियल एनवायरनमेंट वहां डेवलप कर सकते।
जी, तो जैसे एजुकेटर्स और स्टूडेंट्स मेनली जब उनकी बात चल रही है, हम बाकी भी एस्पेक्ट्स को आगे देखते जाएंगे। अब मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर ममता दीदी जी से कि जब एजुकेटर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स, इनके बीच का एक संबंध है, बहुत एक पवित्र संबंध है। अब ये संबंध जब बहुत सुंदर रूप से एक सुंदर रूप ले लेता है, तो आप हमें ये थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कि कैसे इस सुंदर संबंध को डेवलप किया जाए, और जब वो बहुत एक सुंदर तालमेल उन दोनों के बीच में, रैपो उन दोनों के बीच में, तो वो एक कैसा एक रिपल इफेक्ट लाएगा पूरे यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, एक पॉजिटिव एनवायरमेंट या कल्चर डेवलप करने के लिए।
ओम शांति। सम्माननीय मंच और आप सभी, प्रश्न टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप का है। आजकल बच्चे जो है वो टीचर से कभी कभी, इसलिए कि ऑनलाइन एजुकेशन हो गया है तो टीचर से थोड़ा दूर भी रहते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, और अभी तो हाइब्रिड मोड, बहुत सारे जो है वो तरीके से टीचर और स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। लेकिन जब मैं अध्यापक के रूप में पढ़ाने जाती हूँ तो सबसे पहले बच्चों को क्या होता है कि टीचर कैसा होगा, उनको तो पता नहीं है, और टीचर को पता नहीं है कि बच्चे मेरे सामने बैठे हैं वो किस टाइप के हैं। तो धीरे धीरे उनसे एक तालमेल बनाना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि बच्चे जो है ना वो अपने मम्मी पापा से ज़्यादा टीचर की सुनते हैं, तो टीचर को ये चाहिए कि कभी कभी बच्चों को कहते हैं आज नहीं कल आना, परसों आना, तो बच्चे उनसे दूर हो जाते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे किसी से, तो हमने कहा कि हम स्टूडेंट्स को ये हमेशा स्टूडेंट्स को सुनो। जब बच्चा अपनी कोई प्रॉब्लम्स लेके आता है, चाहे पढ़ाई की प्रॉब्लम्स हो चाहे घर की प्रॉब्लम, पहले वो पढ़ाई की लेके आएगा, फिर वो आपके ऊपर विश्वास करता है, क्योंकि विश्वास का होना बहुत जरूरी है टीचर स्टूडेंट में, आपस में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। तो फिर बच्चे आपसे नज़दीक आएंगे और फिर आप देख सकते हैं कि उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है। तो जब हम पहली बार बच्चों को क्लास में बुलाते हैं तो मैं पूछती हूँ कि किसको गीत गाना आता है, किसको डांस करना आता है, किसको लिखना अच्छा आता है, किसकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है ना। तो फिर उन बच्चों को हम कहते हैं कि बाद में, फिर क्लास के बाद तुम हमसे पर्सनली मिलना। तो फिर बच्चे क्लास के बाद आते हैं तो फिर हम उनका पर्सनल काउंसलिंग करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वास्तव में बच्चों के अंदर क्या क्वालिटीज है। तो हम ये सब आजकल क्या है कि सभी क्या बोलते हैं पता है, अभी वो भाई मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे राजकोट वाले कि आप कैसे मैनेज कर लेते हो क्योंकि इतना वर्क होता है प्रिंसिपल को। तो लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो ये कहते हैं ना कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता, वास्तव में वो बहुत ही फ्री फालतू बैठा होता है। जिनके पास सचमुच में टाइम नहीं होता वो कभी ये बोलता भी नहीं है क्योंकि वो उनका वर्क करते जाते हैं, क्योंकि ये वर्क मेरा है और मुझे करना है और मैं करूँगा ही, तो अगर खुशी खुशी करे। लेकिन हम बहुत टाइम ही नहीं मिलता, इतना फ्री बिजी रहते हैं बहन जी, इतना बिजी रहते हैं, हम सबको ये बोलते रहते हैं, उससे क्या होता है हम खुद स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इसीलिए हम बिजी नहीं है, हम इजी है। तो इजी वे में हम जो भी कार्य करेंगे उस रूप में पॉजिटिव होके। फिर ऐसा भी नहीं है कि स्टूडेंट्स और टीचर को आपस में कंधे पे हाथ रख के, टीचर के कंधे पे हाथ रख के या साथ में वो पान बीड़ी मसाला खा के मित्रता करें। मित्रता नहीं होनी चाहिए, ऐसी मित्रता स्टूडेंट्स के साथ नहीं होनी चाहिए। तो मैं कहती थी कि देखो एग्जाम में आपको स्ट्रिक्ट रहना है, अगर आप एग्जाम में उनको चोरी करवाते हो, कुछ लिखवा देते हो, स्टूडेंट बाहर जाके तुरंत बोलेगा आज तो मजा ही आ गया, ममता मैडम ने सारे क्वेश्चन के आंसर हमको लिखवा दिए। इज्जत किसकी जाएगी? टीचर की। तो इसीलिए स्टूडेंट के साथ इतना डिस्टेंस रखिए कि आपके वो आपका आपकी इज्जत भी करे और आपसे प्रेम भी करे, मतलब प्रेम से आपका रिस्पेक्ट भी करे, और आपको भी सभी स्टूडेंट को समान रूप से देखना चाहिए। तो ये टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चे जो है वो आपके पास आते हैं और आपको अपनी बातें, अपने दिल की बातें भी सुनाते हैं कई बार कि मैडम मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है। तो हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें, न कि उस बच्चे की प्रॉब्लम पूरे स्टाफ में या पूरी जगह गाते फिरे, है ना। तो इस प्रकार से बच्चों को बहुत प्यार से हैंडल करना पड़ता है, चाहे वो कॉलेज का स्टूडेंट हो चाहे स्कूल का स्टूडेंट हो।
जी बहुत ही सुंदर। जैसे दीदी जी ने कहा कि अपने प्रोफेशनल बाउंड्रीज को ख्याल में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमें उनके साथ वो तालमेल बनाना है, जहाँ पे वो टीचर स्टूडेंट रिलेशन का जो एक रिस्पेक्ट है वो भी कायम रहे, लेकिन बच्चे इतने फ्री भी हो जाए, जो उनके दिल में अगर कोई मुंझाइश है तो टीचर को वो अपने पेरेंट के रूप में या गाइड मेंटर के रूप में देखे और उनसे उसको साझा कर पाए। क्योंकि अभी के समय पर हम देखते हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज सिटीज में बच्चे बाहर गांव से आए हुए रहते हैं, हॉस्टेलाइट्स ज़्यादा रहते हैं, तो उनके पेरेंट्स उनके पास फिजिकली अवेलेबल नहीं है। तो हम एजुकेटर्स का, टीचर्स का वो एक रोल हो जाता है कि हम उनके स्टूडियो पेरेंट्स बन जाएं, जहाँ पे उनको हमारे अंदर वो एक विश्वास आ जाए कि हम मैम से, सर से अपनी दिल की बात कह सकते हैं कि इस कारण अभी मेरे दिल में, मन में एक मुंझाइश है। लेकिन वही कि एक समदृष्टि सबके लिए हो और वो लव एंड लॉ का एक बैलेंस हो, जहाँ पे उनको एक पालना देनी है वहाँ पे एजुकेटर उस चीज़ को भी फॉलो करे, और जहाँ पे रूल्स के अनुसार चलना है वहाँ पे रूल्स को भी फॉलो करे। जो ये अभी मेंटल वेलबींग की बात हुई उसके साथ ही एक बहुत सुंदर एस्पेक्ट जो एक बच्चे के, स्टूडेंट के पर्सनालिटी का होता है वो है उसकी सोशल वेलबींग। हम समझते हैं कि सोशल वेलबींग मेंटेन करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि उनके स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम्स हो। बच्चा कहाँ पे भी रहता है, कोई ना कोई अलग अलग उसके साथ ऐसा हो जिसके साथ वो अपने दिल की बातों को रख सके। उसका रूममेट हो सकता है, कोई सीनियर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, वाइस चांसलर सर हो सकते हैं, प्रिंसिपल मैम हो सकते हैं, पेरेंट्स तो है ही, सिबलिंग्स है, कोई और फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है, लेकिन एक ही ना हो। बहुत बार ये बात हाथ से छूट जाती है क्योंकि एक व्यक्ति हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम सारी बातें करते हैं, और सपोज कल उससे ही न बने तो यू डोंट हैव एनी सपोर्ट सिस्टम देन। सो मल्टीपल सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करना ये सोशल वेलबींग का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो मैं अभी डॉक्टर महेंद्र भाई जी से पूछना चाहूंगी। कि हम कैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी सेटअप में हम बच्चों को कैसे इनकरेज करें कि वो मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स डेवलप करें जो आगे जाकर उनके सपोर्ट सिस्टम्स बने, और ये मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स उनके पीयर्स, फैकल्टीज, स्टाफ और हर कोई जो जिनके कॉन्टैक्ट में वो आते हैं.
ओम शांति. अभी बहन जी ने अच्छा प्रश्न उठाया. मंच पर अभी ममता दीदी और संजीव भाई जी और मधुकर भाई जी ने अपना इंटेलेक्चुअल और इमोशनल दोनों के संबंध कैसे हैंडल करना है उसको एजुकेटर्स को, स्टूडेंट्स में और स्टूडेंट्स का मन को कैसे उनका एजुकेशन के साथ साथ उनका इमोशनल बैलेंस भी करना है वो आपके सामने रखा है. बहन जी ने प्रश्न पूछा है कि सोशल वेब जो है, रिलेशन जो है, उसको कैसे मैनेज करना है, उसको मजबूत करना है. इन एजुकेशन वी आर सेइंग दैट दो तरफ का एजुकेशन होता है. वन इज कॉल्ड एज द इनफॉर्मल एजुकेशन, अनदर वन इज कॉल्ड एज द फॉर्मल एजुकेशन. जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं बच्चे, उसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं. उसको फॉर्मल एजुकेशन के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड अदर लॉजिकल थिंकिंग के लिए, एक्टिव थिंकिंग के लिए एंड उसका विजन्स के लिए और गोल्स के लिए सो पढ़ाते हैं, मोटिवेशन भी देते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं. इसके साथ साथ बच्चे सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं रहते हैं, समाज में रहते हैं और फैमिली में रहते हैं और उसके फ्रेंड्स के साथ भी रहते हैं. इसलिए वो सोशल वेब, सोशल रिलेशन जो है उसको सोशल मैनेजमेंट, रिलेशन मैनेजमेंट कहते हैं. उसको मजबूत करने के लिए सो पिछले जमाने में क्या होता है, उसको गाइडेंस के लिए स्पिरिचुअल लीडर्स था. सो स्पिरिचुअल लीडर्स वर गाइडिंग द फादर्स एंड द पेरेंट्स एंड ऑल्सो द सोसाइटी रिगार्डिंग द वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, सोशल वैल्यूज एंड अदर वैल्यूज. सो दे गेट मोटिवेटेड बाय द रिलीजियस लीडर्स एंड बच्चों को भी गाइड करते थे. अभी हर फैमिली में क्या होगा, हो गया है, एक ही बच्चा है, वो फीमेल हो मेल हो, एक ही बच्चा है. उनको अनुभव ही नहीं है, ब्रदर का अनुभव नहीं है और सिस्टर का अनुभव ही नहीं है, इमोशनल एजुकेशन भी नहीं है और पेरेंट्स को भी स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं है. वो पेरेंट्स जो है दूसरे जॉब करते हैं, वो बच्चों को हॉस्टल दूसरे इंस्टीट्यूशन में उनको एजुकेशन के लिए भेजते हैं. सो उनका रिलेशन ही नहीं डेवलप होता है, समाज के साथ भी नहीं डेवलप होता है और फैमिली के साथ भी नहीं डेवलप होता है. वो हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल का सिस्टम अलग ही होता है. इसलिए सो नाउ द डिटेरिएशन ऑफ द सोशल वैल्यूज एंड सोशल रिलेशंस. इसलिए अभी हमें हम लोगों ने पेरेंट्स को भी एजुकेशन देना है. पेरेंट्स को कैसे बच्चों को प्यार करना है, उसको कैसे समझाना है, उसको कैसे काउंसलिंग करना है. और अभी पेरेंट्स क्या हो गया है, उनका जो गोल्स है, विजन से बच्चों के द्वारा ही उनको रीच करने का प्रयास करते हैं. बच्चों का पर्सनालिटी, इंटेलेक्चुअल एंड उसका विजन्स और उनका आंतरिक शक्ति अलग ही होता है, पेरेंट्स का शक्ति अलग ही होता है. पेरेंट्स जो समझते नहीं है बच्चों का पर्सनालिटी और विजन्स क्या है, उनका ताकत क्या है, फिर भी पेरेंट्स जो होता है बच्चों से उनका जो विजन से उनको रीच करने के लिए प्रयास कर ले, ये रॉन्ग है. इसलिए द स्पिरिचुअल वैल्यूज हैज टू डेवलप्ड इन द सोसाइटी ऑल्सो इन लार्ज इन जनरल वे एंड ऑल्सो पेरेंट्स को भी एजुकेट करना है. इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भी इसके सब्जेक्ट भी लाना है. सो नाउ द टीचिंग हैज बीन गॉन टू माइक्रो लेवल टीचिंग. सो इसके साथ साथ ही इमोशनल एजुकेशन भी बच्चों को देना है, रिलेशंस क्या है, रिलेशन के साथ हम जिए तो और रिलेशन से क्या हमको मोटिवेशन मिलता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो सारा समझाना है, और वैल्यूज को समझाने से थोड़ा उनको समाज में रिलेशन मेंटेन करने का तरीका और ताकत भी आ जाता है। सो रिलेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोटिवेशन थिंग टू रीच इज गोल।
यस यस, बहुत अच्छा। जैसे भाई जी ने पॉइंट्स जो हाईलाइट किए और हम समझते जा रहे हैं डिस्कशन से, होलिस्टिक वेलबींग कैन बी इम्प्लीमेंटेड विथ होलिस्टिक अप्रोच ओनली। मतलब कोई एक सिस्टम का वो काम नहीं है, सारे स्टेक होल्डर्स को हमें उनके ऊपर ध्यान देना होगा, एजुकेट करना होगा, वो सस्टेनेंस देना होगा जिससे हर कोई सशक्त होता जाए और एक वो कल्चर सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नहीं उस देश का बनता जाए और फिर हम कहें विश्व का बनता जाए। तो उन्होंने मेनली हाईलाइट इसी चीज़ को किया, फैमिलीज, उनके पेरेंट्स जो है अगर वो उस चीज़ को समझ रहे, उस चीज़ को जी रहे हैं तो वही चीज़ें बच्चों में आ जाएंगी। तो स्पिरिचुअल हेल्थ जो फाउंडेशन है अगर वो घर में है हर एक में, बच्चों में आप ही आएगा, है ना। जैसे परसों भी जब पैनल डिस्कशन हुआ था उसमें एक पॉइंट यही रखा गया था कि वैल्यूज़ कैन नॉट बी टॉट, दे आर कॉट। तो घर में बच्चे बचपन से जब अपने पेरेंट्स के साथ है, ये सारी चीज़ें उनमें वो रेजिलियंस आ जाएगा, समझ आ जाएगी सही गलत की। तो आते आते फिर उनके कॉलेज डेज में भी मदद करेगी। और सर ने फिर ये भी कहा कि कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर भी बाकी स्टेक होल्डर्स ने भी इसमें सहयोग देना चाहिए। तब मैं अब अगला प्रश्न पूछना चाहूँगी डॉक्टर मधुकर वावरे जी को कि अब जब हमें ये इंटीग्रेटेड वेलबींग स्ट्रैटेजी बनानी होगी, ये हम कैसे बनाएं जिसमें ये सारे ही जो डायमेंशंस है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, डिजिटल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल, ये सब हमें ऐसे कैसे एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी बनाएं जो ये होलिस्टिक वेलबींग हम इम्प्लीमेंट कर पाए बट विदाउट ओवरवेलमिंग स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स। क्योंकि हम सब समझते हैं अभी के समय पर जितने स्टूडेंट्स ओवरलोडेड है, एजुकेटर्स भी है, अभी और उनका लोड नहीं बढ़ाना है, लेकिन क्या ऐसा करें जो वेलबींग भी हम इंश्योर कर पाए।
ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम बोलते हैं कि बच्चों को अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए, उनको स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, लेकिन ये एक्चुअली प्रैक्टिकली हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ और वो बहुत से यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस में फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, तब मैं बोलता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में फैकल्टी, टीचर्स, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पिलर। और अभी ममता दीदी ने भी बताया कि टीचर जैसे बिहेव करेंगे उसका इम्पैक्ट स्टूडेंट पर ज़्यादा होता है। ऐसे गवर्नमेंट, UGC, AICT, दे आर इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट इनिशिएटिव्स, दे आर इश्यूइंग द डिफरेंट गाइडलाइंस। अभी गवर्नमेंट NEP 2020 इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें जो ये एजुकेशन पॉलिसी है वो स्टूडेंट सेंट्रिक है। तो इसके अंतर्गत जो जो प्रोविजंस दिया है अकॉर्डिंगली हम मतलब इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज करिकुलम चेंज कर रहे हैं, उसमें जो पर्सपेक्टिव है इंडियन नॉलेज प्लस ह्यूमन वैल्यूज वो ऐड कर रहे हैं। AICT और UGC ने 3 weeks का इंडक्शन प्रोग्राम कंपलसरी किया है और इसका यही उद्देश्य है कि बच्चों को मेंटल स्ट्रेंथ मिले, उनको ये पता चले कि हमें हायर एजुकेशन में, मैंने पहले ही बोला कि उनको समझ में आना चाहिए कि हमें क्या करना है। इंडक्शन प्रोग्राम के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं क्योंकि बच्चे एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, नए जगह जाते हैं, तो वहाँ उनको नया नहीं लगना चाहिए, इसके लिए उनके बाकी कलीग के स्टूडेंट के साथ, बाकी फैकल्टी के साथ, वो कैंपस के साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ जुड़ जाए। एडिशनली उसमें योगा पर स्पोर्ट्स पर कुछ सेशंस कंडक्ट करने के लिए गाइडलाइंस दिया है, तो उसके वजह से क्या होगा कि स्टूडेंट कंफर्टेबल हो जाए, उनको पता चलेगा कि नहीं हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, मुझे जितना आता है मेरी जितनी कैपेसिटी है उतना मुझे करना है, मुझे बाकी स्टूडेंट के साथ कंपटीशन नहीं करना है, मुझे खुद के साथ ही कंपटीशन करना है और मेरी प्रोग्रेस करना है। मैंने ये भी बोला कि फैकल्टी इज इंपॉर्टेंट पिलर, क्योंकि जब स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में आता है और 3 साल और 4 साल जो पीरियड है उसके बाद वो ग्रेजुएट होके बाहर जाता है, मतलब जब स्टूडेंट आता है तब वो रॉ मटेरियल है, मतलब वो स्टूडेंट है, लेकिन 3 साल 4 साल के बाद उसको एक समाज में स्टेटस मिलता है, वो ग्रेजुएट है, बीकॉम का है, मतलब वो बीकॉम के रिलेटेड जो फाइनेंस रिलेटेड है कॉमर्स रिलेटेड है उसके उसमें स्किल है, वो हमारा देखने का जो व्यू है वो चेंज होता जाता है। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो हम बोलते कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो उस समय उसमें वो स्किल्स आना चाहिए, इसलिए फैकल्टी को ज्यादा ध्यान देना है और फैकल्टी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि फैकल्टी टीचिंग इट इज अ प्रोफेशन होली प्रोफेशन, कि उसमें हम समाज को कुछ दे रहे हैं, नया समाज फ्यूचर बना रहे हैं डेवलप कर रहे हैं। तो आपने जैसे क्वेश्चन पूछा था कि हमें सस्टेनेबल या कैसे डिजाइन करना है, तो यूजीसी एआईसीटी गाइडलाइंस दे रही है ह्यूमन रिसोर्स यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पर सिलेबस बनाया है, कंटेंट बनाया है, उस पर फैकल्टी के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो फैकल्टी स्टूडेंट्स के लिए दे देंगे। उसमें एक पॉइंट और मुझे ऐड करना है कि कल यहाँ मेरा मुकेश भाई जी से डिस्कशन हुआ था, थॉट लैब ये बहुत अच्छा एस्पेक्ट है और ब्रह्मा कुमारी जी ने अभी 4-5 इंस्टीट्यूट में इम्प्लीमेंट किया है, वो बहुत अच्छा है। मतलब ये सभी स्टूडेंट के लिए कंपल्शन नहीं है, क्योंकि हम कंपल्शन करना नहीं है, लेकिन हमें ऐसा करना है कि हमारा रिजल्ट देख के ऑटोमेटिकली स्टूडेंट उस पर अट्रैक्ट हो जाए और सब स्टूडेंट जुड़ जाए उसके साथ। उसमें मेडिटेशन है, काउंसलिंग है और उसमें रियली कल उन्होंने भाई जी ने बताया था कि 7-8 स्टूडेंट इस लेवल पर थे कि वो सुसाइड करने के स्टेज पर आए थे, लेकिन उस काउंसलिंग के वजह से उनका पूरा मन परिवर्तन हो गया, वो स्ट्रेंथन हो गए, वो स्ट्रांग हो गए। तो ब्रह्मा कुमारी का ये थॉट लैब है, डिजिटल वेलनेस है, ये एस्पेक्ट्स हर इंस्टीट्यूट में इंप्लीमेंट होना चाहिए। उसमें आप यूनिवर्सिटी और ऑटोनोमस कॉलेजेस ऑडिट कोर्स बना सकते हैं।
जी जी, तो सर ने लाइक एक इंटीग्रेटेड वेलबींग स्ट्रैटेजी हम कैसे बनाएं जिससे एजुकेटर्स और स्टूडेंट्स पर एक्स्ट्रा लोड नहीं आए, इसके लिए एक पॉइंट तो सर ने यही बताया कि जो एनईपी में वैल्यूज ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर जो चल रहा है और जो एक अटेंशन दिया हुआ है, तो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो एजुकेटर्स इक्विप हो जाए, और साथ ही साथ अभी सर ने जो थॉट लैब की बात की, मैं समझती हूँ कि इसमें एक इंडिकेशन ये है कि जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस है जो इसमें मास्टरी रखती है, जिनका वो जीवन का अनुभव है, उन वैल्यूज को अपने जीवन में उन्होंने धारण किया है और वो रास्ता चला है जहाँ से हम उस स्ट्रेस से निकलकर एक स्ट्रेस फ्री जीवन को अनुभव कर सके, उनके गाइडेंस को हम अपने एजुकेटर्स और स्टूडेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं जिससे एजुकेटर्स के ऊपर वो सारा लोड नहीं आए। एक है वो जो उनका स्पेसिफिक एरिया है एक्सपर्टीज का, और फिर ये स्पिरिचुअल और वैल्यू बेस्ड ये बहुत अलग चीजें हो जाती है। लेकिन अगर जो बने बनाए इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे अनुभवी शिक्षक है उनकी अगर हम मदद लेते जाते हैं तो एजुकेटर्स के लिए भी उसकी मदद होगी। तो ये थॉट लैब एक मेडिटेशन सेंटर होता है कोई भी कैंपस में, एजुकेशनल कैंपस हो सकता है या कोई भी, जहाँ पे जैसे सर बता रहे थे कि क्लासरूम है, मेडिटेशन रूम है, काउंसलिंग फैसिलिटी दी जाती है और एक फुल टाइम फैकल्टी राजयोग का फैकल्टी वहाँ पर उपस्थित रहेगी जो बच्चा कभी भी वॉक इन कर सके। एक्चुअली ऑल द स्टेक होल्डर्स, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, लीडर्स, हर एक के लिए है वो
वो आ सके, मेडिटेशन को सीखे, मेडिटेशन रूम में मेडिटेशन को अनुभव कर पाए, उस कनेक्शन को अनुभव कर पाए, जहाँ जहाँ ज़रूरत है काउंसलिंग उन बच्चों को मिल पाए, और ऐसा सारा एक सेटअप कैंपस के अंदर, क्योंकि जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में समझती हूँ यूनिवर्सिटीज़ में आते होंगे जो बच्चों को गाइड करते होंगे, लेकिन स्पीकर्स आते हैं, उसका एक इफेक्ट होता है, फिर वो चला जाता है, बट वहाँ पे ही कोई स्थित है जो रोज़ आ रहा है पूरे दिन के लिए है, तो उसका जो एक असिस्टेंस है, वो जो गाइडेंस है, मेंटोरशिप है, वो एक अलग लेवल पर है। तो बहुत अच्छा कि जब हम थोड़ा सा वाइड स्कोप रख के बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को अगर सिस्टम में ले, उनका सपोर्ट ले, तो ज़रूर एजुकेटर्स और स्टूडेंट्स पर इन सारी चीज़ों का लोड नहीं आएगा। अभी इसको ही आगे लेते हुए मैं चाहूँगी अगला प्रश्न पूछना डॉक्टर संजीव शर्मा जी से, कि आपको क्या लगता है ये जब हमें सब इम्प्लीमेंट करना है तो उसमें क्या कॉमन बैरियर्स आ सकते हैं और हमें उन्हें ओवरकम कैसे करना चाहिए?
थैंक यू। कॉमन बैरियर, हम सबसे बड़ा बैरियर तो हम खुद हैं जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो गुरुज हैं, टीचर्स हैं। अगर हमने उन बैरियर्स को क्रॉस कर दिया तो निश्चित रूप से स्टूडेंट्स तो हमारे पास आएगा ही आएगा। लैक ऑफ अवेयरनेस हमारे में, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक अवेयरनेस का और स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस का और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होना बहुत जरूरी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड नॉट बी मेयरली द इंस्टीट्यूशंस, मैकेनिकल इंस्टीट्यूशंस, बट दोज शुड बी द इमोशनल इंस्टीट्यूशंस आल्सो। अब स्टूडेंट जो हमारे पास आता है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा है, उसका सोशल बैकग्राउंड अलग है, कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग है, जियोग्राफिकल बैकग्राउंड अलग हो सकता है, लिंग्विस्टिक बैरियर्स उसके हो सकते हैं, इससे भी और ज्यादा बहुत सारे बैरियर्स हैं। तो उन बैरियर्स को, जो उसके जो बैकग्राउंड्स हैं, उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करें, और उसके लिए सबसे बड़ा जरूरी है कि कम्युनिकेशन सबसे बड़ा जरूरी है। वी हैव टू कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वी फेल टू कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट, इफ वी आर जस्ट मैकेनिकल, जस्ट गोइंग एंड डिलीवरिंग द लेक्चर एंड देन कमिंग आउट एंड वी आर हैविंग जस्ट अ मैकेनिकल रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट, दैट विल नॉट वर्क। वी हैव टू बी वेरी मच इमोशनल, पर्सनल, बट वाइल वी आर बींग पर्सनल, एज ममता दीदी जी सेड दैट There are certain limitations when we are becoming personal with the students, but we have to be very personal. Students should feel comfortable to communicate with, वो अपनी बात किसी से कहे, जैसा पहले भी कहा गया, उसको बात कहने वाला चाहिए, लेकिन हम सोचें कि एक बार मैं कम्युनिकेट करूंगा और वो बात कह देगा, ऐसा नहीं है, उसके साथ बार बार जाना पड़ेगा। और अगेन मैं एक अपना फिर से एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है वाइटल्स करके, मैंने वाइस चांसलर टॉक्स टू द स्टूडेंट्स। मैं खुद हर क्लास में जाता हूं और उनके साथ इंटरेक्ट करता हूं, उनको एक कंजीनियल एनवायरनमेंट में, बिल्कुल पर्सनलाइज वे में, और उसमें कोई दूसरा मेरे साथ, इवन माय पीए इज नॉट देयर, मैं और वो, और उनकी बातों को हम बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। तो अब वो कॉन्फिडेंस उनमें डेवलप हो गया है कि वो फ्रीली कम्युनिकेट, और उससे मुझे अपने इंस्टीट्यूट को बिल्डअप करने में, और एक वो जो बैरियर थे जिनको हम बैरियर, आपने बोला क्या क्या बैरियर हैं, वो बैरियर को रिमूव करने में बहुत बड़ी मदद मिल रही है। सो लीडर्स, अगेन देयर इज द रोल ऑफ लीडर, रोल ऑफ द टीचर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक और बैरियर जो बड़ा हम अपने एजुकेशन सिस्टम में देखते हैं कि आवर एजुकेशन सिस्टम और आवर ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी मच फ्रैगमेंटेड। एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट को पता नहीं है, दूसरे का तीसरे को पता नहीं, तीसरे का चौथे को पता नहीं है, हम कहीं पर कन्वर्ज नहीं हो रहे हैं। और वहां क्या कर रहा है वो स्टूडेंट, वहां उसको किस तरह से बिहेवियर मिला है, यहां आकर के इस डिपार्टमेंट में आकर उसको किस तरह का बिहेवियर मिला है, अगेन द लीडर हैज टू प्ले अ रोल। टीचर हो सकता बहुत अच्छा, किसी डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट में उसको फिर वही ट्रीटमेंट मिल रहा है जो नहीं मिलना चाहिए। तो अगर एक डिपार्टमेंट ठीक भी कर रहा है, एक टीचर ठीक भी कर रहा है, दैट विल नॉट सफिस। हमें एक कोलैबोरेटिव वे से, कॉम्प्रिहेंसिव वे से, हमें एक इंस्टीट्यूशन के रूप में, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, हमें स्टूडेंट्स को टैकल करना है। और स्टूडेंट्स रियली बहुत बड़ा एसेट है हमारे लिए, लेकिन टीचर हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन अगर सही परफॉर्म नहीं कर रहा है टीचर, मैं टीचर हूं, मैं सही परफॉर्म, तो सबसे बड़ी लायबिलिटी भी है टीचर। तो इस लायबिलिटी को एसेट में कन्वर्ट करना है और वो जो वहां जो बैरियर है उनको हमें क्रॉस करना पड़ेगा. सो वी हैव टू बिल्ड द ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव टू बिल्ड द लीडर्स एंड वी हैव टू बिल्ड द टीचर्स. स्टूडेंट अपने आप बिल्ड हो जाता है क्योंकि वेन एवर देर इज स्टूडेंट देर विल बी टीचर एंड वेन एवर देर विल बी ए टीचर देर विल बी ए स्टूडेंट. अगर सही माने में टीचर है तो स्टूडेंट सही निकलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं.
बहुत सुंदर सर ने इस पॉइंट को रखा कि बैरियर्स तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्टेक होल्डर से आएंगे ही, बहुत सारे हैं. आई नो बहुत माना थोड़े से उन्होंने गिनाए लेकिन बहुत सारे बैरियर्स आ सकते हैं जब कुछ भी ऐसा हम एक नई चीज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं बिकॉज दे आर ओवरवर्क्ड. बर्नआउट रेशो बहुत ज्यादा है अभी के समय पर. फिर और ये एक नई चीज क्या, ये भी हो सकता है. तो इसमें सर ने जो एक बहुत सुंदर बात बताई कि लीडर जो है वो खुद उस रास्ते पर चलकर दिखाए. जब वो खुद कर रहा है, लीडर्स के पास जो खुद उस इंस्टीट्यूशन को यूनिवर्सिटी को लीड कर रहा है, हम समझते कि सबसे ज्यादा ओवरवर्क तो वही होंगे, है ना, जो लीडर्स है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के. सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी है. लेकिन जब उन सबके चलते हुए वो अपने को स्टेबल रखते हुए सबके वेलबींग के लिए जब इनिशिएटिव्स लेते हैं, उसके लिए अपना समय देते हैं, तो इससे एक बहुत सुंदर एक रोल मॉडल के रूप में वो इमर्ज हो सकते हैं जो उनसे एजुकेटर्स भी प्रेरणा ले, स्टूडेंट्स भी प्रेरणा ले और बाकी जो दूसरे स्टेक होल्डर्स है वो भी प्रेरणा ले और एक सहयोग का वातावरण वहां पर बनता चले. तो जैसे हम कहते आ रहे हैं कि हर प्रकार की वेलबींग का फाउंडेशन स्पिरिचुअल वेलबींग है, वैसे ही हम समझते हैं कि हर इंस्टीट्यूशन के वेलबींग का फाउंडेशन है उस लीडर का वेलबींग और उसका अप्रोच टुवर्ड्स द वेलबींग, होलिस्टिक वेलबींग ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड द इंस्टीट्यूशन एज अ होल. तो चर्चा को आगे लेते हुए हम एक प्रश्न जो हमें इससे आया हुआ है, ऑडियंस से आया हुआ है, मैं इसको लेना चाहूंगी. और ये प्रश्न जाएगा डॉक्टर मधुकर भ्राता जी को. उन्होंने पूछा है कि अब सब जब स्टूडेंट्स और टीचर्स एजुकेटर्स ओवरवेल्म्ड है, ओवरवर्क्ड है, तो उन्होंने जो कहा है कि बहुत सारा जो अननेसेसरी वर्कलोड है फैकल्टी मेंबर्स के ऊपर नैक और एनबीए का, उस तो उसको क्यों नहीं निकाला जाता है, माना दैट इज व्हाट हिज हैज स्टेटेड हियर. आप देख सकते हैं प्रश्न को. जी जी ठीक है, ओके ठीक है, जी ठीक है, अभी सर गाइड करेंगे हमें.
समवॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन बट नैक एनबीए these are also very important aspects because these are for the measurement of the quality of that institution. और इसमें मतलब जब हम एनबीए का सार भरते हैं या नैक का डिटेल्स भर देते हैं तो उसमें बहुत इनिशिएटिव्स पर पूछते हैं, उसका डेटा आपको फिलअप करना होता है, उसके वजह से आपको मतलब आप समाज में देश में दिखा सकते हैं कि हमारा जो परफॉर्मेंस है उस इंस्टीट्यूशंस का, उस ऑर्गेनाइजेशंस का परफॉर्मेंस क्या है, वो इंडिकेट करता है. और दूसरी साइड से फैकल्टी इज पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, इसीलिए तो मैंने पहले बोला कि फैकल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एजुकेशन सिस्टम. यूजीसी एआईसीटी हम गाइडलाइंस बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, गोल देते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी दे आर इम्प्लीमेंटिंग, दे आर सपोर्टिंग इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर फैसिलिटीज, बट एक्चुअली फैकल्टी को वो करना है. अब क्वेश्चन आता है कि फैकल्टी को जो टीचिंग करना है, मेन ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट को टीचिंग करना है, तो टीचिंग और आजकल हम इस एस्पेक्ट से जब देखते हैं तब ये क्वेश्चन आता है कि हमें स्टूडेंट को ओनली जो सिलेबस में है, कोर्स में है, उतना पढ़ाना मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो गई, ऐसा नहीं है. आई विल कंप्लीट सर. तो उनको काउंसलिंग करना है, उनको ऑल मतलब एकेडमिक प्लस देयर पर्सनल प्लस देयर जो मेंटल रिलेटेड है उसके बारे में उनको काउंसलिंग करना है, उनको सपोर्ट करना है, उनको डेवलप करना है. एट द सेम टाइम मैंने भी टीचिंग किया है. मैं 18 इयर्स फैकल्टी था इंजीनियरिंग कॉलेज में. तो मुझे भी ये मालूम है कि एमबीए के लिए कितना प्रिपरेशन करना पड़ता है. लेकिन हम प्रॉपरली वर्क मैनेजमेंट करेंगे, और बहुत बार ऐसा होता है इनिशियली पहले तो हमारे इंस्टीट्यूशन में ऐसा होता है कि हाँ नैक और एनबीए के लिए जाना है, वो 3-4 महीने ही मालूम होता था, और 3-4 महीने में वो पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करना इट इज वेरी डिफिकल्ट. लेकिन अब सभी अवेयर है इसके बारे में, तो हम डेली मतलब रेगुलरली हमारा रिकॉर्ड रखना है एनबीए के लिए क्या करना है, मैंने कितने सब्जेक्ट किए, उसमें क्या आउटकम है, उसके बारे में मुझे रिकॉर्ड रखना है. मेरे कोर्स में क्या ऑब्जेक्टिव है, मैंने असेसमेंट कैसे किया, उसमें स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा आ गया, और वो रिकॉर्ड मेंटेन करना है. एनबीए नैक के लिए मेजर प्रॉब्लम है वो रिकॉर्ड. हर सेमेस्टर में, लास्ट 3 इयर्स में, लास्ट 5 इयर्स में, हर कोर्स का, हर ऑब्जेक्टिव का, आउटकम का, मतलब मेरे कोर्स का जब आउटकम आता है तब मेरे डिपार्टमेंट का आउटकम उसके साथ ज्वाइन होता है, उसके साथ इंस्टीट्यूट का आउटकम कनेक्ट होता है, मतलब दिस इज इंटरकनेक्टेड. तो इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि हर इंस्टीट्यूशन में जितने रिक्वायर्ड फैकल्टी है उतने होना चाहिए, तब ये प्रॉब्लम ईजी हो जाता है. That is a somewhat practical problem that is from other side.
जी सर,
ने अभी
आप बैठिए.
एक पॉइंट भी ऐड किया था लीडरशिप रिगार्डिंग सर, और अभी बता देंगे.
संजीव शर्मा सर इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे. जी
सर, मैं आपके इस क्वेश्चन से और इस प्रॉब्लम से मैं इत्फाक रखता हूं. और सर आप क्योंकि पॉलिसी मेकर्स सर, सर सर
कोई भी क्वेश्चन है तो आप चीट में लिख कर देंगे प्लीज. आई विल बी
टेकिंग दैट. अभी सर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं उससे बिल्कुल इत्फाक रखता हूं. सर मैं एक्चुअली अभी तो एजुकेटर भी हूं और एक इंस्टीट्यूट को एज वाइस चांसलर हेड भी कर रहा हूं ऑर्गेनाइजेशन को, और मैं पॉलिसी मेकिंग में भी हूं. मैं जो हमारी एनसीआईएसएम है उसका भी मैं मेंबर हूं. सर एक बड़ी वैलिड ये है कि कंट्री में एक एक्रेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन बॉडी होनी चाहिए, और सिंगल एक्रेडिटेशन शुड बी देयर एंड सिंगल एक्रेडिटेशन प्रोसेस शुड बी देयर. एक्चुअली वेयर इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज नैक, साल भर काम करते रहो, फिर आपका एनआईआरएफ उस पर काम करते रहो, कोई और बॉडी होगी, और जो मेडिकल मेरे जैसे जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है वहां एनएबीएल, एनएबीएच जो है, और कई स्टैंडर्ड की वो हैं, बहुत सारे हैं, जीएमपी सर्टिफिकेशन है, एफएसएसएआई है, यानी वी थ्रू आउट द ईयर इन ऑडिट ऑडिट एंड ऑडिट, दैट इज द प्रॉब्लम. मैंने यूजीसी में भी श्री जगदीश जी से बात करी थी कि एक सिंगल एक्रेडिटेशन सिस्टम लाइए. हमारी जो टीचर्स के ऊपर टीचिंग के सिवाय, वो टीचर टीचिंग तो करता ही नहीं, उसको तो दूसरे, वो सही कह रहे हैं, दूसरे काम करता रहता है वो. मैं भी करवाता हूं अपने टीचिंग में, मजबूरी है, नहीं कराऊंगा तो मेरी रैंकिंग जो है, मैं अभी अपने आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट में टॉप रैंकिंग पे कंट्री में हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे टीचर्स को कितना उसका लोड पे करना पड़ रहा है. तो एक सिंगल एक्रेडिटेशन सिस्टम होना चाहिए. एक बार एक्रेडिटेशन ठीक है, और वो भी फॉर सब्सटेंशियल ईयर्स, 4-5 साल के लिए एक बार दे दीजिए. हर बार हर साल नया करना है, दैट इज रियली ए बर्डन, और उससे टीचिंग जो है बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रही है.
जी बहुत धन्यवाद. यहाँ पे हम इस चीज को समझ रहे हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जो सारे एजुकेटर्स के मन में है, उनको सर ने सबके सामने सन्मुख रखा, और आपने भी कुछ उसके ऊपर उपाय दिए, सर ने भी उसके ऊपर कुछ गाइडेंस दिया कि क्या कर सकते हैं. तो जरूर जो पॉलिसी मेकर्स है उसमें ध्यान जरूर देंगे, ये जो पॉइंट है जरूर ऊपर तक पहुंचेगा, ये हम समझते हैं. और एक मेन पॉइंट जो आ जाता है इसके साथ ही, जो चीजें ऑब्वियसली जहां तक हम अपने आवाज को पहुंचा सकते हैं, सजेशंस को पहुंचा सकते हैं, वो तो जरूर पहुंचाएंगे, बट उसके साथ ही साथ एक जो रेजिलियंस है, इनर कोपिंग पावर है,
हर एक की, एज एन एजुकेटर मैं अपनी बढ़ाऊँ, क्योंकि आउटर सिचुएशंस, बाहर से जो प्रेशर्स आ रहे हैं वो हमारे हाथ में है ही नहीं, हम अपना से रख सकते हैं. एक्चुअली आई कैन अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स, बट यहाँ पे जब अभी इसी समय पर मेरे हाथ में क्या है, वो एक चीज है कि मैं यहाँ पे अपने ऊपर ध्यान दूँ जो एक चीज का इम्पैक्ट मेरे जीवन के बाकी वेलबींग्स पर ना आए. वर्क प्रेशर, वर्क लाइफ, ये हमारे जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना. सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ से धन आ रहा है जिससे हम अपने परिवार की पालना कर रहे हैं, बट वहाँ पे जो ये सारी चीज़ें हैं उसका इफेक्ट आपके मेंटल वेलबींग पर आ रहा है. बट हमको ज़रूर आज जो हम तीन दिनों से सुन रहे हैं इसमें इस चीज़ को ज़रूर समझना है कि मैं इन चीज़ों को जो मेरे हाथ में है उनके ऊपर मैं ज़रूर काम करूँ, जो मेरे हाथ में नहीं वहाँ पे अपना से ज़रूर रखूँ, बट सब कुछ होते हुए यहाँ पे बैलेंस ज़रूर रखूँ जो एक चीज़ के कारण मेरे जीवन के बाकी एस्पेक्ट्स पर प्रभाव ना आए. अब मैं अगला प्रश्न लेना चाहूँगी.
एक ऐड करना चाहता हूँ.
अच्छा, इसी पॉइंट में
रिलेटेड.
ठीक है
सर, आपने जैसे बताया कि NAC, NBA, ये बहुत डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज है, लेकिन अभी NEP के अंतर्गत, मतलब अभी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया EK का बिल आ रहा है, उसमें ये सब प्रावधान किया है कि वहाँ सिंगल रेगुलेटरी बॉडी रहे, सिंगल एक्रीडेशन बॉडी रहे, और एक एस्पेक्ट है कि वन नेशन वन डेटा, कि सर ने बोला कि हर बार वो ऑडिट के लिए देना पड़ता है, लेकिन वो पूरा डेटा एक जगह रहेगा तो इट विल बी हेल्प टू गिव द रिक्वायर्ड डेटा फॉर डिफरेंट ऑडिट बॉडीज. तो इसके साथ ही ये थोड़ा इस साइड से भी स्ट्रीमलाइन हो रहा है गवर्नमेंट के साइड से. एडिशनली सर ने पहले बोला था कि लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, लीडरशिप के बारे में सर ने बोला, वैसे हर इंस्टीट्यूशन में लीडरशिप प्रॉपर हो जाएगी तो वहाँ जो फैकल्टी रिक्रूटमेंट है वो प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स इज रिक्वायर्ड, सफिशेंट मैन पावर इज रिक्वायर्ड. और अब हम डेटा कलेक्ट करते हैं AICTE UGC में, तब हमें पता चलता है कि बहुत से लोग कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर है और इसीलिए वो ज़्यादा दिक्कतें आती है. और कॉन्ट्रैक्चुअल जो डेटा होता है, क्योंकि हमने जब इसके साथ, मतलब पैन कार्ड के साथ डेटा कलेक्ट किया, हमारा पोर्टल कनेक्ट कर दिया, तो 1,20,000 का काउंट कम हो गया. तो इसीलिए जो रियल लीडरशिप हर इंस्टीट्यूशन में चाहिए वो वहाँ हो जाएगा तो थोड़ा अच्छा अच्छा बैलेंस हो जाएगा.
जी, बार बार हम इसी चीज को समझ रहे हैं.
यस,
मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सारे डेलीगेट्स से, आपके जो भी प्रश्न हैं आप कृपया सिर्फ और सिर्फ चीट्स में ही दें, यहाँ पे हम उसको लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे. तो एक ही चीज़ बहुत उभर कर आ रही है कि अगर होलिस्टिक वेलबींग का कल्चर एस्टैब्लिश करना है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो ये होलिस्टिक वे से ही हो सकता है. एंड राइट फ्रॉम UGC आई गेस कि सब सारे स्टेक होल्डर्स एजुकेशन सिस्टम के, उनका एक आपस में तालमेल हो, जिनको जो कहना है वो सुना जाए, बड़ों तक पहुंचे, वहाँ पे जो पॉलिसी मेकर्स है उसको ध्यान में रखकर पॉलिसीज बनाए. जो ये बर्नआउट हो रहा है अभी के समय पर, जिसके कारण अगर वो खुद खुश नहीं है एजुकेटर, वो क्या दे सकेगा स्टूडेंट को. हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सबसे बड़ा मेन चीज़ है जो स्टूडेंट को पालना देगा, उनके मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ में उनको को ठीक रखने में मदद करेगा, अपार्ट फ्रॉम देयर एकेडमिक्स, है ना. लेकिन अगर वो खुद इन सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं तो वो कैसे वो सपोर्ट दे पाएंगे. तो ये होलिस्टिकली, और मैं कह समझती हूँ लीडर्स एक मेन दुआ है इन सारी चीज़ों के बीच में. अभी मैं आगे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी.
इसमें मिसिंग लिंक है वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, जो भाई ने बताया कि हमें मतलब पास करना पड़ता है स्टूडेंट्स को. क्यों करना पड़ता है, क्यों करें? वैल्यूज़ को, आप अपने एथिक्स को, वैल्यूज़ को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे अवश्य सफलता है. सेटअप नया नया है NEP का, जब हमारे यहाँ वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी के कोर्सेस बने थे, मैं उस स्पिरिचुअल एजुकेशन में भी पढ़ती भी थी, पढ़ाती भी हूँ, यहाँ भी पढ़ती भी थी पढ़ाती भी थी, दोनों सिस्टम को मैंने देखा है। मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। ब्रह्मा कुमारी इसके एजुकेशन को भी देखा है और बाहर के एजुकेशन को भी देखा है, लेकिन कॉन्फिडेंस, जब हम वैल्यूएबल है, हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी, हम स्पिरिचुअल है, तो अगर बच्चे कोरा रख के आ जाते हैं तो उसको अवश्य फेल कीजिए। क्यों पास करते हैं? हम अपनी अवस्था से नीचे क्यों गिरे? और नए सेटअप में समझने में टाइम लगता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जब एक बार सेटअप हो जाता है तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। फिर हम उससे भी आदि हो जाते हैं, जैसे पहले गुरुकुल पद्धति से हम लोग आदि थे, आज नया सेटअप बन रहा है तो नए नए विचार आ रहे हैं, उस विचारों को भी हमें फॉलो करना है, कोशिश करनी है। नहीं आता है तो सीखना है, सीखने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और जब हम एक बार सीख जाते हैं कोई चीज तो हमें वो बिल्कुल सरल लगती है, फिर बर्डन नहीं लगता है। तो इसीलिए किसी काम को हम जब बर्डन समझ के करते हैं, ये मेरा काम नहीं है, टीचर का काम खाली पढ़ाना है, अरे टीचर का काम खाली पढ़ाना नहीं है, टीचर का काम तो निर्माण का है, समाज का निर्माण करना है, बच्चे का लाइफ बनाना है। ये वेल बीइंग की जो हम बात कर रहे हैं वो जिम्मेदारी हमारी है, कोई डॉक्टर इंजीनियर की नहीं है, टीचर की है। तो इसलिए अच्छा समाज बनाने के लिए एक विजन दिया, फिर विकसित भारत 2047 है ना, तो 47 तक अभी हम हैं, तो 47 तक हम एक अच्छा स्वर्ग बना देंगे इस दुनिया को, और भारत को नंबर 1 जीडीपी तक ले आएंगे, महासत्ता बनाएंगे। ये एक हमको दिया, स्वप्न दिया, तो उस स्वप्न को लेकर के विचार मांगे हैं। तो यूजीसी ने भी अपने सेटअप को, पॉलिसीज बनाई, एनआईआरएफ को भी भरना है, जीएसआईआरएफ को भी भरना है, मतलब सब कुछ करना है, नैक में भी जाना है, तो एक अच्छा सा पेड़ बनाना है जिसमें अच्छे फल लगे। तो ये मिसिंग लिंक जो है ना, वो ये वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी है, जो इस एजुकेशन में आज सरकार को पता चला है कि भाई आईकेएस होना चाहिए, वैल्यू एडेड कोर्सेज होने चाहिए, और तब जाकर के बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने ब्रह्मा कुमारीज के साथ वैल्यू एजुकेशन के कोर्सेज के एमओयू किए, क्योंकि ये बताने वाली पहली इंस्टीट्यूशन कि मूल्य होने चाहिए, ये ब्रह्मा कुमारीश्वरीय विश्वविद्यालय थी। तो इसीलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इस बस वैल्यूज और स्पिरिचुअलिटी को बनाए रखें, लाइफ में आत्मविश्वास से आगे बढ़े।
जी, इसी धागे को आते लेते हुए मैं अगला प्रश्न पूछना चाहूंगी भ्राता महेंद्र भाई जी से, कि जो बात उभर कर अभी आई हुई है कि स्पिरिचुअल वेलबींग ये इंश्योर करना एजुकेटर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स का, मेनली मेन टू स्टेक होल्डर्स का, ये हम सहज रूप से अपने कैंपसेस में कैसे कर पाए, लाइक विदाउट इम्पोजिंग एनी स्पेसिफिक बिलीव्स, क्योंकि एक न्यूक्लियर सेक्युलर इसमें हम कैसे उसको रख सके, सिस्टम्स का एक पार्ट कैसे बना सके।
बहन जी, भाई जी ने भी बताया, आजकल तो स्टूडेंट्स में स्ट्रेस भी ज़्यादा हो रहा है, और भाई जी ने प्रश्न भी पूछा कि एजुकेटर्स में भी स्ट्रेस ज़्यादा हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द वर्कहॉलिक, इसलिए कैंपस में ए वैल्यू एजुकेशन को अडॉप्ट करना है। आपको एक उदाहरण देता हूँ, कर्नाटक गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट ने तो योगा एजुकेशन को कंपल्सरी बनाया है प्राइमरी एंड हायर सेकेंडरी में। कर्नाटक गवर्नमेंट तो ए पॉलिसी बनाया है, उन्होंने हरेक टीम में 300-400 हमारा सेंटर को भेजते हैं, उधर हम 21 दिन का और 7 डेज और 18 डेज अलग अलग ऑफिसर्स और सबको ट्रेनिंग देते हैं, वो 7 डेज कोर्स को ही ट्रेनिंग देते हैं अलग ग्रुप में, ममता बहन जी जानते हैं। सो ऐसे ही कैंपस में अभी तो चेंजेस हो गया है, हमारा ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, सो इट हैज इन्वेंटेड सो मेनी थिंग्स, दैट हैज थॉट लैब एंड वैल्यू एजुकेशन सिस्टम इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएट सिस्टम। सो ऐसे ही हर एक स्टेट एक पॉलिसी बनाना है. यूजीसी भी पॉलिसी है बट देर इज नो इस टीचिंग के लिए टीचिंग करने के लिए इसको फैकल्टी नहीं है. सिर्फ सब्जेक्ट दिया है वैल्यू एजुकेशन का यूजीसी वालों ने, फैकल्टी नहीं है उसके लिए. सो उसको एक फैकल्टी भी चाहिए. हर कैंपस में थॉट लैब भी होना चाहिए और ब्रह्मा कुमारीज का जो स्पिरिचुअल वैल्यूज और ह्यूमन वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज जो इट इज़ यूनिवर्सल इन कैरेक्टर. इट इज़ नॉट बेस्ड अपॉन एनी रिलीजियस बिलीफ्स. सो इसके आधार से अभी तो बहुत रिसोर्स पर्सन इस इंस्टीट्यूशन में है. इसलिए गवर्नमेंट अभी भी कल शाहजी आए थे और दूसरा तीन मिनिस्टर्स आए थे, वो भी मृत्युंजय भाई के डिस्कस कर रहे थे. हम गवर्नमेंट से MOU करेंगे, बाद में हर एक इंस्टीट्यूशन से वैल्यू एजुकेशन का थॉट लैब. थॉट लैब के इसके अलावा और भी सोचेंगे क्या करना है स्टूडेंट्स को इसको इम्पार्ट करने के लिए. इसलिए एक तो फैकल्टी होना चाहिए, दूसरा है हर एक इंस्टीट्यूशन में थॉट लैब भी होना चाहिए.
बहुत अच्छा है ना. जैसे बात निकल के आई हुई है, अगर एक स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए एक सस्टेनेंस देना है तो जरूर वहाँ पे कोई अपॉइंटेड फैकल्टी होनी चाहिए. बीच बीच में तो अलग अलग सेशंस होते हैं जैसे पहले भी नमूद किया गया था, बट उसका इम्पैक्ट थोड़े समय के लिए रहता है. जब कोई वहाँ पे फुल टाइम बैठा हुआ है, सबके लिए बैठा हुआ है, सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, तो उनके अनुभव का, उनकी समझ का फायदा हर एक को हो सकता है. और कोई भी स्ट्रेंथ है, एम्पावरमेंट है, वो एक दिन के बाद कभी होती ही नहीं है, है ना. फिजिकल भी स्ट्रेंथ अगर कमानी है तो रेगुलरली एक्सरसाइज और अच्छा डाइट लेना होगा. वैसे ये स्पिरिचुअल नॉलेज का डाइट और मेडिटेशन एक्सरसाइज मन के लिए, ये जितना हम करते जाएंगे, मन बुद्धि रूपी जो उनके जो मसल्स है, मेंटल मसल्स है, वो पावरफुल होते जाएंगे. और सही गलत की पहचान, हर एक चीज़ को हम कैसे सही पर्सपेक्टिव से देखें, जो बाहर चीज़ है उसका मेरे ऊपर फिर असर ना हो, वो देखने का एक नज़रिया कैसे डेवलप करें. तो दोनों चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल नॉलेज एंड मेडिटेशन. नॉलेज से वो पर्सपेक्टिव मिलता है, मेडिटेशन से वो शक्तियाँ मिलती है जिससे उस पर्सपेक्टिव को मैं यूज़ कर पाऊँ, ताकत मिलती है. तो ये जब हर एक कैंपस में वहाँ पर होगा, वो कराने के लिए कोई निमित्त अनुभवी फैकल्टी वहाँ पर होगी, तो सबके लिए बहुत सुंदर पालना का काम वहाँ से हो सकता है. शिक्षा मंत्री स्वयं उन्होंने अगर इस चीज़ के बारे में कहा है तो मैं समझती हूँ हर एक इंस्टीट्यूशन के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना. मैं अभी फिर से ममता दीदी को एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि क्या आपके पास ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स लिए और वो बहुत सक्सेसफुल हुए हर एक के लिए.
देखिए ऐसा है कि इंस्टीट्यूशंस को हर एक व्यक्ति जो मतलब प्रिंसिपल है वो भी अपनी इंस्टीट्यूशन को अच्छा बनाना चाहते हैं. टीचर्स भी चाहते हैं कि हमारा नाम हो, हमारे कॉलेज का नाम हो. तो पहले जब मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मुझे हर समय जीरो से स्टार्ट करना होता है, परंतु यहाँ जो मुझे शिक्षा मिली तो यहाँ का अनुभव और घर के भी संस्कार, तो ये सब मिला करके जब मैंने देखा कि मैं जिस कॉलेज में प्रिंसिपल बन के जा रही हूँ, तो मुझे इस कॉलेज में आने के बाद, क्योंकि मैं एज अ प्रिंसिपल आई हूँ तो नेचुरली सब चाहेंगे कि कुछ विकास का कार्य करें, तो उसके लिए मुझे स्टूडेंट्स को भी समझना पड़ेगा किस एरिया के स्टूडेंट्स हैं. तो थोड़े बहुत हम लोग थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है और थोड़ा समझदारी से काम लेना पड़ता है. तो हमारे मेरी कॉलेज में जो बच्चे NSS स्टार्ट किया हमने, तो NSS के बच्चों को हम लोग सेवा भाव सिखाते हैं कि सेवा क्या होता है, समाज सेवा सिखाते हैं. तो NSS के बच्चों का कैंप होता है हर, वो तो आप सब जानते हैं, हर साल में एक बार 7 days का, पहले 10 days का होता था, फिर 7 days किया. तो एज अ NSS प्रोग्रामर भी हमने काम किया हुआ है. तो मैंने सोचा कि बच्चों में ये भावना जगे, पर उनके साथ थोड़ा आजकल बच्चों में एडिक्शन भी ज्यादा होती है, ये खान पान की अशुद्धि होती है। तो मैंने हमारे एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर को बुलाया और कहा कि ऐसा है कि हमारा एक कैंपस है रिट्रीट सेंटर, वहाँ गांव की सेवा करनी है, तो हम लोग इस बार इस गांव को एडॉप्ट करते हैं और बच्चों को रखेंगे ब्रह्म कुमारीज के रिट्रीट सेंटर में। तो रिसेंटली हमने 50 बच्चों को एक यूनिट को वहाँ भेजा, तो वहाँ उन्होंने बच्चों ने जो पाया, जो सेवा की और उनको इतना अच्छा लगा। हमने एक्सपेरिमेंट ही किया था कि वो बच्चे एनएसएस के बच्चे वहाँ क्या सीखते हैं, तो ब्रह्म कुमारी के माहौल में वो लोग रहे और वहाँ उन्होंने जो खान पान, क्योंकि लहसुन प्याज हम नहीं खाते हैं तो ऐसा खान पान भी, और साथ में उनको व्यसन भी नहीं करना है, और साथ में मॉर्निंग उठ करके जो क्लासेस वगैरह हैं वो करने हैं और साथ में सेवा भी करनी है। तो इतना बच्चों को अच्छा लगा और लास्ट दिन एक बच्चा उठ करके सुनाने लगा अपना अनुभव। तो उन्होंने कहा कि, वो बच्चे ने कहा कि मैं मैडम अभी तक किसी को बताया नहीं, लेकिन मुझे ना सिगरेट पीने की आदत थी, मना मैं चेन स्मोकर था, तो मैं सोच रहा था कि ब्रह्म कुमारीज में तो सर ने मना बोला है कि मुझे सिगरेट नहीं पीना है, तो अब मैं क्या करूँगा। तो एक दिन छुप करके मैंने सिगरेट को हाथ तो लगाया, पर फिर उसके माइंड में आया, नहीं नहीं मैं कैसे कैंपस में बैठा हूँ, मुझे यहाँ नहीं पीना चाहिए। तो उसने फिर कचरे के डिब्बे में, वो छुपा के लेके आया होगा, तो फिर उसने कचरे के डिब्बे में डाल दिया। तो जब वो बोला तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो फेल हो जाऊंगी क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो बच्चों ने कहा कि ये बहुत अच्छा हमको लगा, तो उनको एक एटमोस्फियर मिले। तो ये जो थॉट लैब वाली बात हम लोग करते हैं ना, तो वो थॉट लैब क्या है, एक ऐसा काउंसलिंग सेंटर है जहां बच्चे अपनी समस्याएं हैं, अपनी मतलब जो है मेंटल स्टेबिलिटी को अच्छी तरह से वहां पर जाकर के बना सके। तो ये थॉट लैब का प्रोसेस है, वो हर इंस्टीट्यूट में अगर होगा तो ऐसी कोई चीज नहीं होगी। दूसरी बात कि आजकल हमारी जो वर्किंग एफिशिएंसी है उसको भी स्पिरिचुअलिटी के कारण, आप देख रहा स्पिरिचुअलिटी के कारण आप एक्टिव नहीं लेकिन प्रोएक्टिव होकर के काम कर सकते हैं। तो वर्किंग एफिशिएंसी भी मेडिटेशन से बढ़ती है, जब हम मेडिटेशन कराते हैं तो आपको करना क्या है, क्लासरूम में जाने से पहले 2 मिनट सब बच्चों को साइलेंस में बिठा के परमात्मा की याद में 1 मिनट भी अगर आप करेंगे ना और फिर पढ़ाना शुरू करेंगे तो बच्चों के माइंड में भी उसका असर होगा। टीचर का बोला हुआ एक एक वाक्य बच्चों के माइंड को असर करता है। तो ऐसे स्पिरिचुअल एटमोस्फियर बना करके रखिए, और ऐसे एटमोस्फियर जब हम बना करके रखेंगे तो मैं समझती हूं कि हम हर कार्य में सक्सेस हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है
जी। बहुत धन्यवाद। जैसे दीदी ने बोलते बोलते ये भी एक सुझाव दिया कि हम आप चिट पर लिख कर भेजेंगे,
पैनलिस्ट, respected panelist and facilitator and my dear friends, इधर एक मैं सुझाव देना चाह रहा हूँ। अभी तक जो इधर चर्चा चला तो भी सुसाइडल IIT में और बहुत कुछ कॉलेजेस में स्पेशल बर्डन हो रहा है, NAAC का बर्डन हो रहा है, टीचर काम नहीं कर रहा है, वाइस चांसलर को बहुत बर्डन हो रहा है, सबको डीन को हो रहा है, और इवन ये घर में भी पेरेंट्स को हो रहा है, ये सब कुछ चल रहा है, सुना मैंने। इससे मेरे को एक सुझाव आया कि हम कॉलेज में रहते हो और यूनिवर्सिटी में रहते हो, उधर एक स्पोर्ट्स का टीचर रखते हैं, हम स्पोर्ट्स का टीचर रखते हैं। जैसा ये स्पेशल ऐसा ये केस अभी नया आया सुसाइडल, ऐसा सिनारियो पहले नहीं था स्टूडेंट का प्रॉब्लम, नाउ वो अब चालू हो गया ऐसा प्रॉब्लम। सो इसके लिए मेरा सुझाव ये है, एक स्पेशल अपॉइंटी कॉलेज में एक जैसा टीचर रहते हैं स्पोर्ट टीचर रहते हैं वैसे ही एक स्पेशल रखना है, तो वैसा रख दिए तो भी हम क्या करता है, ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ होल कॉलेज सिस्टम जो भी बच्चे रहते हैं उनको करेंगे एक बात। और वो क्या होता है, टीचर को बर्डन नहीं रहेगा, एज वी डिस्कस नैक वो जो भी होता है वो बहुत तो डिफिकल्ट है। आई डोंट नो इट, आई एम ए रिटायर्ड प्रिंसिपल ऑफ द डिग्री कॉलेज, अंडर मी वन नैक आई कंप्लीटेड एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रॉब्लम डिस्कस्ड इज सेम व्हाट आई नो इट। तो ये हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि और एक चर्चा इधर हो गया कि ओम शांति का सेंटर वो कॉलेज में हम लोग एक सेक्शन बना के उधर एक करे, तो कॉलेज वाले मेरे को लगता है ओम शांति सेंटर को अलाउ नहीं करते। क्यों बोले तो वो लोग रहते हैं हर एक कम्युनिटी वाले कॉलेज में रहते हैं, उनको एक एड्रेसिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा, तो उसके लिए वो भी एक थोड़ा डिफिकल्टी रहेगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और एक सुझाव है मेरे पास।
ऐसा नहीं है, मैं खुद इसी ड्रेस में मेरे कॉलेज में जाती हूँ।
नहीं होंगे वो अलग, मेरा मत रख रहा हूँ, मेरा मत रख रहा हूँ। तो और ऐसा वो ऐसा प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये ओम शांति ने कंप्लीट ये ग्लोब के लिए देख ले रहे, ये जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने के लिए, उसके लिए ये ओम शांति से हर एक 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 टीचर को ट्रेनिंग करके एक एक इंस्टीट्यूशन में स्टेट में भेज देना है, और उधर ट्रेनिंग करके वो लोग आप लोग ये ओम शांति के तरफ से वो टीचर जाना है, टीचर को सैलरी कॉलेज वाले पेमेंट करना है। ये सुझाव से एक सॉल्यूशनफुल बनेगा बोल के लगता है। थैंक यू।
आपका जो आपकी जो बात है, यूजीसी के सेक्रेटरी बैठे हैं हमारे सामने, तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी को आप नेट एग्जाम जो होती है ना प्रोफेसर बनने के लिए, तो अगर नेट में ये सब्जेक्ट आ जाए और हर यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट जैसे हर सब्जेक्ट होता है ऐसे ये सब्जेक्ट पर एनईपी में ये धीरे धीरे आ रहा है, तो मेजर माइनर में भी आ जाएगा, तो मैं समझती हूँ ये हो सकता है। तो उसके लिए आप इनिशिएट लेंगे तो अच्छी बात है, हम तो साथ देने के लिए रेडी है। हम तो एक एक को सारे टीचर्स को वैल्यू एजुकेशन पढ़ाना चाहते हैं, तो ये इनिशिएट तो कॉलेज वालों को या यूनिवर्सिटी को ही लेना पड़ेगा, यूजीसी को ही लेना पड़ेगा।
जी, यहाँ पे बहुत अच्छा ममता दीदी ने भी गाइडेंस दिया और सर ने भी दो एक बहुत अच्छे इनपुट्स दिए हैं। यहाँ पे सिर्फ हम एक आपको बताना चाहेंगे, ब्रह्मा कुमारी संस्था ये एक रिलीजियस संस्था नहीं है, एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शैक्षणिक और सामाजिक संस्था है। तो स्पिरिचुअलिटी माना क्या, कहाँ से शब्द आ रहा है, स्पिरिट माना आत्मा, अध्यात्म माना आत्मा का अध्ययन करना। कोई भी धर्म तो देह के है, तो आत्मा तो हर जगह है और वो फिर देह का कोई एक धर्म फॉलो कर रहा है। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो मैं अपने बारे में जानती हूँ और अपनी आंतरिक शक्तियों का मैं विकास कैसे करूँ उस बारे में मैं जानती हूँ, तो ये अभ्यास माना अध्यात्म है। तो आध्यात्मिक शैक्षणिक, तो अभ्यास ही कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मैं अपने को समझने की पढ़ाई कर रही हूँ, इसलिए एक शैक्षणिक संस्था भी है। और क्योंकि हर एक आत्मा की एम्पावरमेंट है, हम कहेंगे एक सामाजिक संस्था भी है। तो इस कारण हमारा ये जो थॉट लैब के सेटअप की बहुत बार बात हुई है, तो इसलिए मैं इसको क्लियर करना चाहूँगी। तो ये बहुत ही सिक्युलर वे से है, यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक धर्म की बात नहीं हो रही है, सिर्फ खुद को जानना, उस परम शक्ति को जानना, उनसे जुड़ना, उनसे उस गुण शक्तियों को अपने में भरना, और फिर वो जो ताकत है उसके आधार से अपने जीवन के अलग अलग चैलेंजेस को फेस करना। वो जो टूल्स है वो वहाँ पे दिए जाते हैं, और फिर इन जनरल जैसे काउंसलिंग है या कोई टेक्नो स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट है उसमें बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है, जो पढ़ाई भी करे और ऐसी चीज़ों को भी समझे। तो वहाँ पे रिलीजन का कोई वो बैरियर नहीं है। और आपने जैसे कहा कि फिर एक ऑप्शन आपने दिया कि ट्रेनिंग्स मिलती रहे टीचर्स को, तो ज़रूर हम ये करते ही है। हमारा नया एक प्रोजेक्ट भी आ रहा है लीप करके, उसमें भी हमने FDPs SDPs के साथ FDPs भी प्लान किए हुए हैं। तो ज़रूर आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं कि आपके यहाँ के फैकल्टीज़ के लिए FDPs प्लान करें, जो आकर ये सारी बातें, मैम का भी प्रश्न था कैसे हम सब मैनेज करें, तो एजुकेटर्स के लिए भी ट्रेनिंग ज़रूरी है और रेगुलर बेसिस पर उसको टचअप करना ज़रूरी है, अपग्रेड करना ज़रूरी है। तो अभी के चर्चा सत्र को विराम देते हुए एक लास्ट प्रश्न, मैं समझती हूँ कि ये मैं समझती हूँ ये आगे बढ़ता जाएगा, आपको जिस भी पैनलिस्ट से जो भी प्रश्न पूछना है ऑफ स्टेज आप पूछ सकते हैं, हमें समय की सीमा है। दीदी आप क्या कहना चाहेंगे अभी, क्योंकि समय की सीमा है हमें।
हाँ बोलिए।
मैं समझती हूँ टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो सबके विचार जो है वो ये होते जा रहे हैं।
गवर्नमेंट की एक प्रयोगशाला जैसी बनी हुई है, मतलब विशेष करके इस संदर्भ में कहना चाह रहा हूं मैं कि जब तक एक पॉलिसी शुरू होती है 3-4 साल जब तक वो इम्प्लीमेंट होती है तब तक दूसरी पॉलिसी आ जाती है। तो जैसे अभी सीबीसीएस सिस्टम था, जैसे हम सीबीसीएस सिस्टम को हम लोग रन करने लगे समझने लगे तब तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 शुरू हुई, 2025 में जाकर के अब हम उसको धीरे धीरे अपनी सिलेबस में और अपनी कोर्सेस में सम्मिलित कर रहे हैं। मुझे लग रहा है अगर 2-3-4 साल बाद अगर ये भी चेंज हो गया तो इससे इंस्टीट्यूशन के इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तो है नहीं कि हम उस पॉलिसी को लागू करें या इतना सिलेबस कुछ लागू करें, तो इस पर कुछ विचार होना चाहिए कि एक पॉलिसी लागू हो तो उसको समय देना चाहिए कि जैसे को इम्प्लीमेंट।
जी आपका थॉट इनके सामने आ गया है, जरूर ये इसके ऊपर विचार भी करेंगे। और जैसे हम समझते हैं हम हमेशा सॉल्यूशन के ऊपर, समाधान के ऊपर ध्यान रखें, और समाधान मिली इसीलिए समस्याएं सामने रखी जा रही है। बट समय की सीमा है हमें, आप सबको साइट सीइंग के लिए भी जाना है, उसके पहले भोजन भी कर लेना है। सो अभी के चर्चा सत्र को हम यहाँ पे विराम देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आदरणीय डॉक्टर संजीव शर्मा सर को पूछना चाहूँगी कि अभी तक जो हमने बातें की उसमें से मेनली उसमें हमने मेनली मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग की बात की। मैं आपसे समझना चाहूँगी कि यहाँ से जाने के बाद ऐसे कौन से 3 मेन एक्शनेबल आइटम्स होंगे जहाँ पे ये इन सारे वेलबींग्स की तो बात है ही, लेकिन फिजिकल वेलबींग, फाइनेंशियल और डिजिटल वेलबींग, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी समस्या, डिजिटल वेलबींग एक बहुत बड़ी समस्या अभी के समय पर उभर कर आई है। तो सारे ही एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आप कौन से 3 मेन एक्शन आइटम्स इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे?
फर्स्ट तो मैडम मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉम्युनिकेट, कॉम्युनिकेट एंड कॉम्युनिकेट, कॉम्युनिकेट विद द टीचर्स, कॉम्युनिकेट विद द स्टूडेंट्स, देर मस्ट बी इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्युनिकेशन, नंबर वन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सो दैट द मैसेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी पास टू एवरी वन एंड एवरी वन शुड बी अलाइड एंड दिस द डेवलपमेंट आर संस्था का हम निर्माण करें उसका। लेकिन एक बात ध्यान रखने के लिए, निर्माणों के इस युग में चरित्र निर्माण ना हम भूलें, ये एक ध्यान रखना पड़ेगा हमें। दूसरा स्किल डेवलपमेंट, जो स्किल डेवलपमेंट इन द स्टूडेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप कॉन्फिडेंस विद इन देम, क्यों जिस चीज के लिए वो हमारे पास आए हैं उसको हम बहुत बढ़िया तरीके से उनको सिखाएं। तीसरा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, एडिंग ऑफ द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, नॉट ओनली टीचिंग और समथिंग, एवरी वॉक ऑफ लाइफ, इवन इफ आई एम इन माई फैमिली तो वहां भी स्पिरिचुअलिटी का टच वहां भी कुछ ना कुछ रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। एंड डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी कैन बैलेंस द लाइफ ऑफ एवरी वन, और जितने आज डिजीजेज या जितनी प्रॉब्लम्स हमारे इसमें आ रही हैं स्पिरिचुअलिटी जो है उसमें ये काम कर रही है। चौथा जो मैं, आपने 3 पूछे, मैं चौथा एक एड ऑन दे रहा हूं, वो ये है कि टीचर्स को और स्टूडेंट्स को, टीचर्स के लिए या वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए एक बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस किस चीज का? वर्क एंड बैलेंस बिटवीन वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, दैट बैलेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। आज वो इंटरमिंगल हो रहा है, और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी यस, स्टडी लाइफ एंड देन पर्सनल लाइफ, ये 4 एस्पेक्ट बहुत जरूरी है जो मैं समझता हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद जो आपने कहा, सार रूप में सारी बातें आ गई सर के आंसर में। सबसे मूल बात है इंटर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हर एक सेट ऑफ स्टेक होल्डर्स में ज़रूर होना चाहिए, और फिर जिसके लिए बच्चे आ रहे हैं वो बहुत अच्छी रीति से उन तक पहुंचे, वो सारे स्किल्स उनमें डेवलप हो तो वो सेटिस्फाइड रहेंगे। फिर हर एक प्रकार जो भी वॉक ऑफ लाइफ है उसमें स्पिरिचुअलिटी ज़रूर इन्वॉल्व हो, और फिर बैलेंस, परमात्मा कहते हैं अगर बैलेंस रखेंगे तो ब्लेसिंग्स मिलेंगे, और ब्लेसिंग्स जब मिलते हैं तो ब्लिस अनुभव होगा। तो जो आज हम अनुभव कर रहे हैं, एक बर्नआउट को अनुभव कर रहे हैं, स्ट्रेस को अनुभव कर रहे हैं, इसको निकालना है तो जरूर स्टूडेंट के एकेडमिक लाइफ और पर्सनल लाइफ का बैलेंस, टीचर्स के वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ का बैलेंस इंश्योर करना जरूरी है। और जिसमें हम समझते हैं स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक ज्ञान, ईश्वरीय शक्तियाँ, जरूर हर एक आत्मा जो एजुकेटर का रोल प्ले कर रहा है उसको उतना सशक्त जरूर बनाएगा कि वो ये बैलेंस रख पाए और उस ब्लिस को भी अनुभव कर पाए। शिवानी दीदी ने उनके सेशंस में एक बात को बहुत बार बार दोहराया था कि हमने ही कलयुग बनाया, कलयुग से घोर कलयुग बनाया, अब सतयुग आने वाला है, लाने वाले हम ही है। और उन्होंने कहा था हमने कहना मैं है ना, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन की एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। दीदी ने अलग अलग हमें इक्वेशंस भी दिए थे, एक इक्वेशन जो उन्होंने नमूद नहीं किया था जो मैं बताकर आज के चर्चा सत्र को विराम देना चाहूंगी। दीदी हमेशा अपने क्लासेस में कहते हैं कि संकल्प परिवर्तन से संस्कार परिवर्तन, क्योंकि सोच बदलेगी तो ही मेरे एक्शंस और फिर संस्कार बदलेंगे। संस्कार परिवर्तन से संस्कृति परिवर्तन, और संस्कृति गुरु में परिवर्तन आएगा तो उसके संस्कार, वेरी नाइस। तो जो संकल्प बदले, सोच बदलेगी तो संस्कार परिवर्तन होते जाएंगे, संस्कार परिवर्तन से संस्कृति परिवर्तन हो जाएगी। वो तो बेहद की बात कर रहे थे, हम सिर्फ एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी देखें तो हर एक स्टेक होल्डर के सोच में परिवर्तन, उनके कर्मों में परिवर्तन, उनके संस्कारों में परिवर्तन, वहाँ के कल्चर में परिवर्तन लाएगा, जो कल्चर ऑफ वेलबींग हमको बनाना है। और संस्कृति परिवर्तन से संसार परिवर्तन है ना, एक रिपल इफेक्ट होके वो सतयुगी दुनिया आएगी जो हम सब चाहते हैं, स्वयं परमात्मा भी चाहते हैं। तो आप सबका जो पैनलिस्ट, सम्मानित पैनलिस्ट यहाँ पे उपस्थित है, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सबने बहुत ध्यान से, प्यार से और पेशेंटली सब सुना, इसलिए आप सबका भी धन्यवाद है।